जो अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने कहा है कि संगम युग जो है वो मिलन का युग है और संसार की आत्माओं का वर्णन किया है कि संसार की आत्माएं भगवान को किस तरह से खोज रही है, भगवान को किस तरह से ढूंढ रही है। जैसे ये कभी भगवान को हजारों वर्षों से ढूंढ रहा था, खोज रहा था और एक दिन उसे पता भी चल गया, पर पता चलने के बाद भी वो भगवान के घर नहीं जाता क्योंकि उसे डर है कि यदि भगवान को मैं पा लूं तो आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, इसलिए वो चुपचाप लौट आता है। तो आज की जो व्यक्तवाणी है जिसका बहुत सुंदर हेडिंग है, संगम युग जो है वो बाप बच्चों के मिलन का युग है, और ये मुरली है 5/12/83 की। तो इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों का बाबा से जो मिलन हुआ है उसके विषय में कहा। बहुत सुंदर बाबा ने वर्णन किया है कि संसार की आत्माओं का क्या हाल है। इस पर उनके मन में जो भी भगवान को ढूंढ रही है आत्माएं, तीन प्रकार की वो आत्माएं, अगर इंग्लिश में कहना चाहूं तो उसको कहेंगे, एक तो वो आत्माएं हैं जो वेटिंग वाली है, एक दूसरी आत्माएं हैं जो होपिंग वाली है, तीसरे प्रकार की आत्माएं हैं जो है सिंगिंग वाली। तो पहले प्रकार की जो आत्माएं हैं, इस संसार में असंख्य आत्माएं हैं जो इंतजार कर रही है और समझती है कि भगवान को पाना मुश्किल है, असंभव है, बेअंत है। उनको लगता है कि प्रभु को पाना असंभव, इम्पॉसिबल, एंड दे आर वेटिंग फॉर गॉड। तो ये फर्स्ट कैटेगरी की आत्माएं हैं संसार में कि जो भगवान को पाना चाहती है परंतु समझती है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, पाया नहीं जा सकता। ये फर्स्ट कैटेगरी, हम इसको नाम देंगे वेटिंग कैटेगरी। बाबा ने कहा है वो लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की आत्माएं वो है होपिंग कैटेगरी। सभी को आवाज आ रही है हमारी आवाज? सभी को हमारी आवाज आ रही है? ओम शांति। दूसरे प्रकार की जो आत्माएं हैं, जी जी, दूसरे प्रकार की जो आत्माएं हैं वो होपिंग वाली आत्माएं हैं, उम्मीद, भगवान मिल जाएगा, भगवान आ जाएगा, इसी उम्मीद से चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये सेकंड कैटेगरी की सोल्स है। थर्ड कैटेगरी की सोल्स है वो है सिंगिंग वाली, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन। कब होगा, कब कहाँ होगा, कैसे होगा भगवान का मिलन, ये सारी जो आत्माएं हैं ये गीत गा रही है। बाबा ने कहा है वियोग के गीत गा रही है, सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सोल जिसका बाबा ने आज मुरली में वर्णन किया है। और इसकी तुलना में बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा कि हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को सहज पा दिया, वो जो है वो वियोगी है, वो कब होगा, कब होगा, कब होगा करने वाले। और हम जो आत्माएं हैं वो सहज योगी है, अब वाली, वो है कब वाली, हम है अब वाली। तो इस मुरली की शुरुआत ही बाबा ने इस तरह से की है कि संसार की ऐसी तीन प्रकार की आत्माएं हैं। उसके बाद में बाबा ने कहा ये जो आत्माएं हैं संसार की, इनके तीन प्रश्न हैं, थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट ही स्टार्टेड विद थ्री टाइप्स ऑफ सीकर, तीन प्रकार की आत्माएं जो भगवान को ढूंढ रही है, और फिर उनके तीन प्रकार के प्रश्न। उनका सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान कब मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। और बाबा ने कहा है तुम बच्चों का उत्तर क्या है कि हमें तो वो मिला ही हुआ है, ऐसा है ही नहीं कि वो हमको नहीं मिला, हम तो सदा उसके साथ ही है, सहज है। बाप और बच्चों का मिलन कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता, ये बाबा ने कहा। और कहा कि तुम तो सदैव उसके साथ चलते हो, बैठते हो, उठते हो, पलते हो, सब कुछ बाबा के साथ करते हो। संसार की आत्मा है उधर होपिंग और सिंगिंग और वेटिंग में लगी हुई है, और तुम सब कार्य भगवान के साथ करते हो। We are the souls who live, move and have our being in Him. ऐसी इस संसार की हम महान आत्माएं हैं जो भगवान के साथ उठती है, भगवान के साथ बैठती है, भगवान के साथ चलती है, पलती है, घूमती है, फिरती है, सब कुछ परमात्मा के साथ करती है। उनका प्रश्न है भगवान कब मिलेंगे बताओ, और हम कहते हैं भगवान सेकंड में मिल जाए। हमें भगवान सेकंड में मिल चुका है, ये उनका पहला प्रश्न है। उनका दूसरा प्रश्न है भगवान से मन कैसे लगाए। बाबा ने कहा है तुम बहुत सुंदर उत्तर देते हो, और तुम्हारा उत्तर है मन लगाना तो छोड़ो, हमारा तो मन ही उसका हो गया। तो जब मन ही उसका हो गया तो लगाने की क्या बात। कितना सुंदर उत्तर बाबा ने दिया। वो कहते हैं हाउ टू फोकस माइंड ऑन गॉड एंड यू से दैट आवर माइंड हैज बिकम हिज, हमारा मन ही उसका हो गया है। तो फोकस करने की तो बात ही नहीं है, मन लगाने की क्या बात। मन लगाना तो बहुत दूर है, हमारा मन ही भगवान का हो गया है, ये उनका दूसरा प्रश्न है। उनका तीसरा प्रश्न बाबा ने कहा इस मुरली में कि वो लोग कहते हैं कि भगवान जो है उससे प्यार कैसे करें, हाउ टू लव गॉड। दिस इज देयर थर्ड क्वेश्चन। देयर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज how we will know God, how we will achieve God, how we will reach God and in how much time. The second question is how we are going to focus our mind on God, and the third question is how to love God. Baba ne to bahut sundar uttar diya hai ki jab duniya wale ye kehte hain ki bhagwan se pyar kaise kare, to hamara uttar hoga pyar to chhodo, हम तो स्वयं प्रेम स्वरूप बन गए हैं। प्यार तो छोड़ो, हम तो स्वयं प्रेम के सागर बन गए हैं। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि हम जैसे सागर है, मास्टर सागर, और शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है उसी तरह लहरें उछलने लगती है, प्रेम की लहरें, ज्ञान की लहरें, सुख की, शांति की, शक्ति की, ये सारी लहरें अपने आप उछलने लगती है। तो संसार वाले कहते हैं भगवान से प्यार कैसे करें, और हम कहते हैं कि हम स्वयं ही प्रेम के सागर बन गए, हम स्वयं ही मास्टर सागर बन गए हैं, हम कहते हैं हम स्वयं ही प्रेम स्वरूप बन गए हैं। मुझे भक्ति मार्ग की एक बात याद आ रही है। भारत में एक बहुत बड़े भक्त कवि हुए थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, और जिन्होंने भक्ति की लहर भारत में दौड़ाई थी। उसके बाद में भक्ति मार्ग में कृष्ण भक्ति मुख्य रूप से बहुत बढ़ गई थी। तो वो कृष्ण के प्रेम में, जिनको वो इष्ट समझते थे, दिन रात तल्लीन रहते थे, मगन रहते थे। जब जागृत रहते थे तो भजन गाते थे, कभी कभी थोड़ा सा मगन अवस्था में रहते थे जब बोलते नहीं थे, और कभी कभी एकदम समाधि में चले जाते थे। तो एक बार की बात है जब वो कृष्ण प्रेम में और कृष्ण विरह में दिन रात भर रो रहे थे, उनका जो पूरा बिस्तर था वो आंसुओं से भीग गया था, और एक संसार का एक व्यक्ति, एक गृहस्थी सुबह सुबह उनके पास आता है और पूछता है कि हाउ टू लव गॉड, भगवान से प्यार कैसे करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि तुम मेरी ये अवस्था देखकर ये नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान को कैसे प्यार करें, तो मेरे बताने की बात क्या समझ पाओ। गॉड्स लव indescribable, you cannot try to understand this love of God in words. It is the language of silence, it is the wordlessness, it is param maun. Usi maun aur us ekant mein hi bhagwan ke is pyar ko samjha ja sakta hai. To sansar ki aatmaye ye teen prakar ke prashn poochti hai। सबसे पहला प्रश्न बताया कि भगवान कब मिलेगा, हमारा उत्तर है हमें मिल चुका है। और उसको पाने के बाद इस संसार में हमारे लिए कुछ भी अनमिला नहीं रहा, सब कुछ हमने पा लिया। हम हमारे लिए बाप और बच्चों का ये जो मिलन है बहुत सहज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, संभव है, संसार की आत्माओं के लिए बेअंत है। दूसरा प्रश्न फिर से हम दोहरा रहे हैं, संसार की आत्माएं पूछती है कि मन कैसे लगाए। बाबा ने उत्तर दिया है, हमने अपना मन ही उसको दे दिया, मन ही उसका हो गया। यहाँ पर हम एक योग का अभ्यास कर सकते हैं अमृत वेला सदस्य, कि बाबा मेरा ये जो मन है उसमें जो विचार है, उसमें जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भी स्मृतियां हैं, जो भी मेमोरीज हैं, जो भी दृष्टि वृत्ति सब कुछ जो है, मैं आज सब कुछ आपको दे रहा हूं। एवरीथिंग विच इज माइंड, माई माइंड, माई इंटेलेक्ट, माई संस्कार, आई नो मोस्ट ऑफ देम मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर श्रीमद, बट दे आर देयर विथ मी एंड आई एम ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ देम। बाबा मैं ये सब कुछ आपके सामने रखता हूं, ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आप ले लो, तो मन ही उसको दे देना। ये योग का एक अभ्यास हो सकता है और हमें हर अमृत वेला नुमा शाम के योग के समय भी दो समय ये अभ्यास करना है कि बाबा मेरा मन मैंने तुझे दे दिया, भावनाएं तुझे दे दी, विचार तुझे दे दी, कल्पनाएं तुझे दे दी, ये जो मेरी इमेजिनेशन है, even this imagination of mine you take over, so that whatever I imagine, whatever I think, whatever I feel, whatever I try to memorize, whatever I try to recall, whatever I try to understand, everything is yours. ये योग का अभ्यास। और तीसरी बात जो कही बाबा ने, बाबा से प्यार कैसे करें, भगवान से प्यार कैसे करें, तो बाबा ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि तुम सब कौन हो, सागर हो, और तुम्हारी लहरें उछल रही है, तो सागर और उसकी लहरें। हम ये सोचे कि मैं मास्टर सागर हूं, जो ओशन में वेव्स होती है, देर आर सर्टन रीजन फॉर दोज वेव्स। एक रीजन जो बताते हैं विंड, दूसरा रीजन जो बताते हैं सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट इमेजिन कि शिव बाबा जो है वो सूर्य है। बाबा ने कहा है जितनी जितनी ज्ञान सूर्य की रोशनी किरणें बढ़ेगी उतना ये जो लहरें हैं ज्यादा उछलेगी। तो हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं कि शिव बाबा ऊपर है, उसकी किरणें नीचे आ रही है, तेजी से नीचे आ रही है, और मैं जो हूं वो मास्टर सागर, और मेरे ऊपर जैसे ही वो किरणें गिर रही है प्रेम की लहरें उठ रही है, सुख की लहरें उठ रही है, शांति की लहरें उठ रही है, शक्ति की लहरें उठ रही है, ये असंख्य लहरें उठ रही है। और ये जो लहरें हैं, इन लहरों से अंदर का जो दुख है, अशांति है, पीड़ा है, असंतुष्टता है, सब कुछ समाप्त हो रहा है। सारा किचड़ा जो है वो लहरें आ रही है और वो लहरें सारा किचड़ा सागर के पास ले जा रही है। तो ये विजुअलाइजेशन करना है। तो ये मुरली का फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें बाबा ने थ्री टाइप्स ऑफ सीकर्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद बाबा ने इस मुरली में हमें तीन अलग अलग सोमान दिए हैं, अलग अलग पैराग्राफ में। एक जगह कहा है कि तुम चात्रक हो। Does anybody know what is चात्रक? किसी को पता है चात्रक क्या होता है? Anybody?
चात्रक पक्षी है जो हमेशा राह देखता है उसके लिए चातक
जी, एक्चुअली वो है चातक पक्षी, मुरली में प्रिंट हुआ है चातक, चातक नहीं होता है चातक। तो ये जो पक्षी होता है ये ऐसा एक पक्षी है जो केवल बारिश का पानी पीता है, चाहे कितना भी पानी नीचे हो, समुन्दर हो, परंतु वो पानी नहीं पीता, केवल बारिश का जो पानी आएगा वो भी पहली बूंदे केवल वही पिएगा। बाबा कह रहे हैं तुम अनुभव के चातक हो या चातक हो। ये जो लहरें हैं इनको बाबा ने एक सुंदर नाम दिया, ये है अलौकिक वर्षा, और इस अलौकिक वर्षे के जो अनुभव करते हैं वो है अनुभव के चातक या चातक। तो हम वो पंछी है कि हु आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग विच इज मटेरियल, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस टेम्पोरल वर्ल्ड, वी आर सेटिस्फाइड ओनली एंड ओनली विद गॉड। हम वो आत्माएं कि जिन्हें केवल भगवान ही संतुष्ट करता है, संसार में जो सुख है और वैभव है और नाम और मान और शान, संसार की जो भी बातें हैं इनमें से कोई भी बात हमें संतुष्ट तृप्त नहीं करता, हमें केवल और केवल प्रभु का प्रेम, प्रभु की छत्र छाया, उसी में हमको अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा तुम चातक पक्षी हो, अनुभव के चातक हो, ये पहला समान। दूसरी एक बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही है, बाबा ने कहा है कि यहाँ पर ओम शांति भवन में बाबा से मुलाकात चल रही है, 83 की मुरली है, शायद पूरा ओम शांति भवन भरा हुआ है और बहुत सारे विदेशी आए हैं, वो दूरबीन लेकर आए और दूरबीन से बाबा को देखे, तो बाबा ने उनको देखा और कहा कि बाप दादा ऐसे दूरबीन लिए जो बच्चे हैं उनको देखकर बहुत हर्षित हो रहे, और एक दूसरी बात कही, पर कहीं तुमको माया आकर्षित तो नहीं करती, यदि माया ने आकर्षित किया, यदि माया ने आकर्षित किया तो क्या हो जाएगा, दुविधा में सच्चा होगी, और जब दुविधा होगी तब दलदल आएगा। माया आकर्षण, माया के आकर्षण से दुविधा, ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, और इसको बाबा ने कहा है दिस इज लाइक अ क्रैक मायर, दिस इज लाइक अ दैट बॉग, दिस इज लाइक दलदल, उस दलदल में फंस जाओगे, और दलदल के पास भी अगर कोई चला जाए तो दलदल आकर्षित करता है, दलदल खींचता है। तो क्या चाहिए, बाबा ने पूछा, एक तरफ दिल तख्त है एक तरफ दलदल, दलदल की तरफ जाओगे तो चिल्लाना पड़ेगा, टू ऑप्शन, एक भगवान का दिल तख्त और दूसरी तरफ माया का दलदल। यदि माया का आकर्षण होता है, इफ माया पुल्स यू, इफ माया अट्रैक्ट्स यू, देन देयर विल बी कंफ्यूजन, एक दुविधा होगी, हमारी स्थिति वैसे ही होगी जैसे वो दिखाए शेक्सपियर का हेमलेट, टू बी और नॉट टू बी, हमेशा कहते रहता है ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, करना चाहिए करना नहीं क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऑलवेज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो बाबा ने यहाँ एक समान दिया है, तुम बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, चिल्लाने वाले नहीं हो, दलदल माया की ओर आकर्षित होने वाले नहीं हो, दुविधा में जाने वाले नहीं। तीसरा एक सम्मान यहाँ पर दिया है, बाबा ने कहा है जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ ब्राह्मण जन, तुमको बाबा ने एक बर्थडे गिफ्ट दी है, और वो बर्थडे गिफ्ट है ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो तुम वो आत्माएं हो जिन्होंने भगवान को जान लिया, परिचय पाने वाले नहीं हो, केवल पहचानने वाले हो, पहचान का नेत्र तुम्हें मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला होगा। तो ये तीन सम्मान बाबा ने यहाँ दिए हैं हमको, सबसे पहला कौन सा बताया
चातक हो,
हाँ अनुभव के चातक, हर एक ब्राह्मण आत्मा ये लक्ष्य रखे, मुझे ज्ञान केवल पढ़ना नहीं है, मुझे ज्ञान केवल सुनाना नहीं है, मुझे ज्ञान केवल रटना नहीं है, मुझे ज्ञान केवल इसलिए नहीं कि मैं दूसरों को बताऊं, परंतु क्या करना है, अनुभव. द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी इज एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन. ज्ञान बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत क्लासेस कर ली, सुना ली, सब कुछ किया, पर अनुभव, इसके छात्र बनना है. थर्स्टी फॉर एक्सपीरियंस, द मोर थर्स्टी वन इज देन ओनली यू गेट एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस ऑफ बॉडीलेसनेस, एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स लव, एक्सपीरियंस ऑफ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन दिस कमिंग लाइफ. ये अनुभव के छात्र पहला. दूसरा कहा, तुम दिल तक का नशीन हो. जो भी माया जीवन में है और जो भी आकर्षण करती है और जो भी दरवाजे हैं, उन सभी दरवाजों को, उन सभी खिड़कियों को बंद कर देना है. वो डिजिटल मीडिया है, व्हाट्सएप तो नहीं है, सोशल मीडिया तो नहीं है जहां से माया आ रही है, वो कोई संबंध तो नहीं है, वो कोई व्यक्ति तो नहीं है, कुछ भी हो जहां से माया आ रही है, स्टॉप दैट सोर, रिमूव दैट सोर. जैसे हम अभी अगस्त वाणी पिछले संडे बता रहे थे, ये अभी भक्ति का एक ग्रुप था, उसने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति था, भक्त था क्रिश्चियन, रोज चर्च जाता था और भगवान से कहता था, मेरे जीवन में इतने दुख है, इतना दुख है, प्लीज रिमूव द कॉबवेब, ये जो मकड़ी का जाल मेरे जीवन में है, हे प्रभु इसको दूर करो, हे प्रभु इसको दूर करो. रोज आके एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे जीवन में जो मकड़ी का जाल है उसको दूर करो, रिमूव द कॉबवेब, रिमूव द कॉबवेब. आता था, प्रार्थना करता था, जाता था. एक दिन 10 साल तक ये प्रार्थना करता था. एक दिन वो पादरी पीछे से आया, खड़ा रहा, इसकी प्रार्थना चालू थी, हे प्रभु रिमूव द कॉबवेब, मेरे जीवन का ये मकड़ी का जाल दूर करो. तो उस पादरी ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, अरे रिमूव द स्पाइडर, किल द स्पाइडर फर्स्ट. केवल ये कहने से नहीं होगा कि मेरे जीवन का मकड़ी का जाल दूर करो, पहले मकड़ी को तो मारो. रिमूव द स्पाइडर, किल द स्पाइडर. वो मकड़ी क्या है, कौन है, व्यक्ति है, संबंध है, कोई पदार्थ है, धन है, सत्ता है, पावर है, नाम मान शान है, क्या है. उस मकड़ी को जब तक नहीं हटाओगे जीवन में दुविधा बनी रहेगी. तो बाबा ने दूसरा सम्मान दिया है, दिल तक नशीन. माया की ओर आकर्षित होने वाले नहीं, दुविधा में जाने वाले नहीं, दलदल में फंसने वाले नहीं, ये दूसरा सम्मान. तीसरा एक सम्मान दिया, कौन सा
त्रिनेत्र.
ज्ञान, त्रिनेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड और आई ऑफ विजडम. बाबा के सामने कुछ नए बच्चे भी आए हैं, तो बाबा ने उनसे कहा, नए समझते हो या कल्प कल्प के पुराने हो, कल्प कल्प के पुराने बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड आई, तुम्हारे पास पहचान की आंख है. तो ये तीन सम्मान दिए, यहाँ पर मुरली पूरी होती है. तो आप जब आज पूरी मुरली पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे उसको पढ़ना है ताकि उसमें से कुछ बातें हम एक्सट्रैक्ट कर सके. खाली पढ़ लेना सुन लेने से नहीं, कुछ बातें ऐसी निकालनी है और उनको योग की ड्रिल बना देना, ताकि दूसरे दिन अमृत वेला हम उसको प्रैक्टिस कर सके. तो यहाँ पर मुरली पूरी होती है, उसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की. ऐसी तीन पार्टियां हैं, हम उसको वी विल डिवाइड दिस इंटू 8 पॉइंट्स. ये जो पार्टियों से मुलाकात है, हम कहेंगे कि 8 समान कहो, 8 नशे कहो या खुशी, क्योंकि हर एक पैराग्राफ में, हर पॉइंट में, हर एक पार्टी से जो बाबा मिल रहे हैं उनको फिर लास्ट में बाबा ने हर जगह कहा है कि तुम्हें इसकी खुशी रहनी चाहिए, तुम्हें इसका नशा रहना चाहिए. तो ऐसी 8 पॉइंट्स है नशे की. तो सबसे पहली बात जो बाबा ने कही, आप कौन हो, आप हो विशेष आत्मा और समर्थ आत्मा. विशेष अर्थात, ये सबसे पहला सम्मान दिया या पहले नशे की पॉइंट या पहली खुशी की पॉइंट, बाबा ने कहा विशेष अर्थात तुम्हारा कुछ भी साधारण नहीं है. तुम्हारे बोल, तुम्हारे संकल्प कुछ भी साधारण नहीं, तुम्हारा सब कुछ विशेष है, एवरीथिंग ऑफ यूअर्स इज स्पेशल बिकॉज यू आर नॉट द ऑर्डिनरी सोल, यू आर गॉड चूजन सोल ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ. भगवान ने तुमको उठाया है, चुना है इस धरती से. इतने सारे असंख्य आत्माएं हैं, उनमें से किसी को कहां से, किसी को कहां से, किसी को कहां से भगवान ने चुना है. इसलिए तुम सब कौन हो, कौन हो, कौन हो?
विशेष आत्मा हो.
विशेष आत्मा है. तो सबसे पहला सम्मान दिया है तो हमेशा याद रखना है. और सम्मान इज अ हायर कॉन्शियसनेस. यू नो ब्राह्मीन फैमिली में टू थिंग्स आर हैपनिंग. वन इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, खुद को नीचा समझना. क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जेलसी इज गेटिंग क्रिएटेड. हम देखते हैं कि किसी में कुछ तो सुपीरियोरिटी है और हम में वो सुपीरियोरिटी नहीं है, तो वी फील इंफीरियर. एंड दिस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दिस हीन भावना इज वेरी डेंजरस. वन इज दिस. एंड सेकेंड इज सेल्फ विक्टिमाइजेशन. वी थिंक दैट वन इज टू ब्लेम अदर्स, बट more dangerous than that is blaming oneself. खुद को ब्लेम करना. In order to get rid of these two things, what we need is samman, self-respect, higher consciousness. तो बाबा ने सबसे पहला सम्मान दिया है, तुम विशेष आत्माएं हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा बोल, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संबंध संपर्क सब कुछ विशेष है. वहीं पे साथ साथ जो जोड़ा है फर्स्ट पैराग्राफ में, बाबा ने कहा तुम समर्थ आत्मा है. समर्थ अर्थात जैसे ही ये स्मृति आएगी कि मैं समर्थ हूँ, व्यर्थ स्वतः ही नष्ट हो जाएगा. यहाँ पर फिर से बाबा ने एक उदाहरण दिया है. यू नो हर एक मुरली में बाबा उदाहरणों से मुरली समझाते. दिस इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ पैराबल. गॉड इज सच अ सुप्रीम टीचर कि वो अपनी हर बात को समझाने के लिए इस संसार के उदाहरण देता है. क्योंकि ज्ञान निराकार है, एब्स्ट्रैक्ट है, कैसे समझाया जाए. जैसे संसार के उदाहरण को खुंटी के रूप में बाबा प्रयोग करता है और अपनी पॉइंट को वहां टंगाता है. यहां पर बाबा ने एक उदाहरण दिया है, जैसे वो सूर्य होता है, वो सूर्य अपनी किरणों से गंदगी को नष्ट कर देता है, उसी तरह तुम्हारे समर्थ संकल्प सभी व्यर्थ को नष्ट कर देंगे. तो जस्ट इमेजिन कि आई एम दैट शाइनिंग सन. जैसे वो सूर्य सब कुछ व्यर्थ को नष्ट कर देता है, वैसे मैं ऐसा एक सूर्य हूं कि जिससे सब कुछ नष्ट हो रहा है. तो बाबा ने कहा इस स्मृति में रहो, दो स्मृति में, एक विशेष आत्मा हूं और दूसरा समर्थ आत्मा हूं. आई एम अ स्पेशल सोल, आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रांग सोल, वेरी पावरफुल सोल. जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस और लॉन्ग पीरियड इन साइलेंस, इन सॉलिट्यूड, मौन में, एकांत में बैठकर इसका अभ्यास करना कि मैं विशेष आत्मा हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा और जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी. तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट पार्टियों से मुलाकात में फर्स्ट पैराग्राफ. कमिंग टू सेकंड पैराग्राफ, बाबा ने कहा कि तुम वो आत्माएं हो, सेकंड सम्मान या सेकंड नशा या सेकंड खुशी की पॉइंट. बाबा ने कहा तुम वो आत्माएं हो जो सदा उमंग उत्साह में रहने वाली. और यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कही कि यदि सदा उमंग उत्साह में रहना है तो जो तुमको मिला है वो बांटते जाओ. जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो क्या करना है, दूसरों को देते जाना है, तो उमंग उत्साह रहेगा. और एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जो उमंग उत्साह तुम्हारे पास अब है उसी के आधार पर कल्प कल्प उमंग उत्साह रहेगा. यदि अभी उमंग उत्साह है तो हमेशा उमंग उत्साह रहेगा. नाउ एंथुसियाज्म, ऑलवेज एंथुसियाज्म. नाउ देयर इज नो एंथुसियाज्म, नाउ देयर इज अ डिप्रेशन, नाउ यू आर नॉट फीलिंग लाइक टू डू एनीथिंग, प्रोबेबली द सेम थिंग विल कंटिन्यू फॉर होल कल्प. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ लैक ऑफ एंथुसियाज्म? ऐसे को कौन से कारण है बिकॉज ऑफ विच आई एम लैकिंग एंथुसियाज्म? What has taken away my enthusiasm? Who has come and who has hijacked my enthusiasm? कौन है जिसने मेरे जीवन का उमंग उत्साह छीन लिया, खत्म कर दिया? उसको देखना है, उस कारण को, किल द स्पाइडर। केवल चिल्लाने से नहीं होगा, ये जो मकड़ी का जाल है, ये मकड़ी का जाल है, इससे मैं कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। नो, किल द स्पाइडर, रिमूव द सोर्स। जो सोर्स है जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, दिस इज समवेयर डीप इन द सबकॉन्शियस माइंड, प्रोबेबली इट इज नॉट आउटसाइड एनीवेयर, इट इज सम ओल्ड इंटरनल संस्कार, सम मेमोरी विच इज कमिंग आउट एंड ट्राइंग टू डिस्टर्ब। Try to know what is it. Just try to understand it. That understanding will free you. As it said, English mein kaha jata hai, complete understanding is complete freedom. Complete understanding is complete freedom. Koi bhi baat ko samajh lo, to usse mukti ho jayegi. Kaise mukt ho, kaise mukt ho, chillane se nahi hoga. Kya hai vastavikta? Jaise do vyaktiyon ka sambandh hai. और दोनों व्यक्तियों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, शायद एक दूसरे को समझा नहीं है दोनों। जब वो दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, अपने आप वो डिस्टर्बेंस से मुक्त हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे से, और ये हमको पता है वो पूरी नहीं कर सकता, फिर भी रखे हुए। दैट कॉजेस डिस्टर्बेंस एंड दैट डिस्टर्बेंस लीड टू लैक ऑफ एंथुसियाज्म। तो बाबा ने दूसरा सामान यहाँ दिया है, दूसरे नशे की पॉइंट पार्टियों से मुलाकात में, कि तुम वो आत्माएं हो जो सदैव उमंग उत्साह में रहते हो, और विधि जो मिला उसको बांटना, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जो भी आप लोग वहां बैठे हैं, हम चाहेंगे कि हर एक सारे दिन भर अपने मुख से ज्ञान की कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर निकाले, कुछ ना कुछ पॉइंट या तो फोन पर शेयर करें एक दूसरे के साथ, या तो बोलकर जब मिलते हैं तब चर्चा करें ज्ञान की। ज्ञान की चर्चा एक ऐसी चीज है कि ब्राह्मण परिवार में हम देखते हैं बहुत कम हो रही है। आपस में दो लोग मिलते हैं तो व्यर्थ की ही चर्चा चलती है। कितना अच्छा हो कि दो व्यक्ति मिले और वो ये डिस्कस करे कि आज सुबह मुरली में बाबा ने क्या क्या अच्छी पॉइंट बताई। जब मुख से ज्ञान निकलेगा तो ज्ञान के नए संस्कार क्रिएट होंगे। To create संस्कार्स of ज्ञान, you need to speak knowledge. तो दूसरा सामान दिया, कौन सा? हम कौन है? सभी बोलेंगे
सदा उमंग उत्साह में रहने वाले,
सदा उमंग उत्साह में रहने वाली
आत्मा।
तीसरा सामान, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा।
जी जी जी, तीसरा सामान है, तीसरा सामान है तुम अंगद हो। तीसरा सामान है तुम कौन हो? अंगद। यह बाबा ने कहा है, अंगद जो था हमेशा मुरली में सुनते हैं, अंगद अर्थात अचल डोल, जो एकदम स्थिर है, इमोवेबल अनशेकेबल जो, पर उसका आधार एक चीज बताई और वो है एक रस। अंगद वो है जो एक रस है, जिसकी बुद्धि अनेक रसों में आकर्षित हो रही है, दो की तरफ है, एक रस नहीं है। बाबा को छोड़कर व्यक्तियों में आकर्षण है तो दुविधा होगी। पहले भी कहा था कि माया की तरफ आकर्षण होगी तो दुविधा होगी और दलदल में फंसेंगे। अभी फिर से बाबा कह रहे हैं एक रस अर्थात एक में ही बुद्धि, बस एक से ही सर्व प्राप्ति हो, एक ही सब कुछ है। यदि एक सब कुछ नहीं तो बुद्धि में कंफ्यूजन होगा, मूंझेगी। अंगद बनना अर्थात जैसे दिखाया अंगद ने अपना पैर रख दिया और कोई हिला नहीं पाया, हम भी अपने संकल्पों में अंगद, अपनी भावनाओं में अंगद, एक प्यार में अंगद, कि उस प्यार को, उस प्यार के पैर को कोई हिला ना सके, कोई भी मनुष्य ना आ जाए बीच में और जो हमें डिस्टर्ब कर दे। हमारा जो बाबा से प्यार है वो एक रस है, तो अंगद अचर अडोल एक रस। ये है तीसरा सामान, या नशे की पॉइंट या खुशी की पॉइंट पार्टियों से मुलाकात। चौथा जो बात बाबा ने यहां कही है, बाबा ने कहा है तुम वो आत्माएं हो जो हीरो पार्टधारी। उदाहरण दिया, जैसे कोई फिल्म है और उसमें हीरो होता है तो उसको कितनी खुशी होती है कि मेरा पार्ट हीरो का है।
नहीं नहीं देता है
जैसे ही। अच्छा सुनाई नहीं दे रहा अभी आ रहा है सुनाई आ रहा है
हाँ अभी सुनाई देता है ब्रदर अभी सुनाई देता
है बीच में बंद हो गया था
जो सामान दिया। अच्छा ओके ओके अभी आ रहा है ना।
हाँ जी अभी आ रहा है
चौथा जो क्या कहा कम आ रहा है
अभी ब्रदर फोर्थ पॉइंट शुरू किया था फोर्थ पॉइंट
हाँ हाँ चालू कर रहे हैं हम
दो पॉइंट
चौथी। हाँ जी सुना रहे हैं तो बाबा ने कहा कि चौथी जो खुशी की पॉइंट है वो है तुम हो इस ड्रामा में हीरो पार्ट धारी। जैसे वो जो एक्टर होता है संसार में और कोई हीरो एक्टर होता है उसको कितनी खुशी होती है कि मैं इस फिल्म में इस मूवी में हीरो एक्टर हूं। वैसे तुमको भी खुशी होनी चाहिए क्योंकि इस पूरे ड्रामा में इस पूरे साइकिल में यू आर द हीरो एक्टर। हम कह रहे थे कि जो हीरो एक्टर होता है उसका अपनी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान होता है। आपने देखा होगा जब फिल्म की शूटिंग होती है तो एक सीन जब लेते हैं और दूसरा सीन लेने को होता है बीच में थोड़ा टाइम होता है तो तुरंत वो मेकअप वाला आ जाता है और उसको मेकअप करने लगता है ठीक उसको आईना दिखाता है कि सब ठीक है सब ठीक तो खराब तो नहीं हो गया। एक एक सीन के बाद में मेकअप होता है जो उसको क्या कहते हैं पता नहीं जो ड्रेसर होता है वो आता है आईना दिखाता है पाउडर लगाता है उसके बाल ठीक करता है। एक एक सीन के बाद चेकिंग हीरो एक्टर अर्थात जिसका अपने ऊपर इतना ध्यान है। तो बाबा ने कहा तुम इस ड्रामा में हीरो एक्टर हो और तुम्हारा गीत है कि वाह रे मैं और वाह रे मेरा भाग्य। ये गीत खुद भी गाओ और दूसरों को भी सिखाओ। गीत खुद भी गाना है और क्या करना है दूसरों को भी सिखाना है। सिंग एंड मेक अदर्स टू सिंग टीच अदर्स टू सिंग जस्ट सिंग दिस सॉन्ग। और बाबा ने कहा कि ये तकदीर की जो लकीर है तुम्हारे भाग्य की खींच गई है लंबी लकीर है जो खींच गई है। तो ऐसे ये पहले चार समान चार खुशी की पॉइंट सबसे पहला कौन सा बताया कि मैं कौन हूँ बताएंगे मैं कौन हूँ
विशेष आत्मा हूँ।
दूसरा क्या बताया मैं कौन हूँ उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा
उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा।
क्या बताया मैं कौन हूँ
अंगद हूँ।
तीसरा क्या बताया मैं
अंगद हूँ
अंगद समान एक रस आत्मा हूँ। और चौथा क्या बताया
एक रस
मैं
हीरो पाठधारी आत्मा।
ऐसे ही चार बातें हैं ये फर्स्ट पार्टी से मुलाकात में चार बातें थी। अभी सेकंड पार्टी है जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई। बाबा ने कहा फिर से एक रस वाली बात कही कि तुम सब एक रस आत्माएं हो और यहाँ पर कुमारियों से बाबा बात कर रहे। तो कुमारियों को बाबा ने कहा कुमारी को क्या चाहिए रहता है दो चीज चाहिए रहती है एक तो वर चाहिए पति और दूसरा चाहिए घर। तो यहाँ पर बाबा कुमारियों से कह रहे हैं यहाँ पर तुम कुमारियों को ऐसा वर मिला है कि जिसकी महिमा सारी दुनिया गाता है और तुमको ऐसा घर मिला है कि जहां पर अप्राप्त कोई वस्तु। कुमारियों से बाबा कह रहे वादा पक्का किया है बाबा के साथ कि बस एक को ही वरेंगे एक के ही घर में रहेंगे एक ही के घर के एक ही के साथ चलेंगे। तो दूसरा सम्मान है एक रस फिर से और बाबा ने कुमारियों को कहा तुम हो सच्ची समझदार कुमारी। तो हमारा दूसरा सम्मान है कि मैं एक रस आत्मा हूँ दूसरा या पांचवा मैं एक रस आत्मा हूँ और समझदार आत्मा। यहाँ पर बाबा ने माताओं को भी याद किया कुमारियों को कहा कि कुमारियां गिरने से बच गई माताओं के लिए कहेंगे, जिसको बाबा ने कहा है वो गोपाल की गौए है, गोपाल जो है भगवान उसकी गाय है, और वो जो गाय है वो जो माताएं है वो गिरी थी और बच गई। कुमारियों के लिए कहा कि वो तो गिरने से ही बच गई, परंतु माताएं गिरी थी और फिर बच गई। ऐसा तो ये पूरे पैराग्राफ में बाबा ने फिर से रिवाइज करा है। पांचवा समान हम इसको ले लेंगे कि मैं एकरस आत्मा हूँ, समझदार आत्मा हूँ, और वो जो गोपाल है उसकी हम गौवे है, वो गोपाल है। जैसे भागवत में दिखाया है श्री कृष्ण जो है वो ज्यादा समय घर में नहीं रहता था, वो ज्यादा समय गायों के साथ रहता था, सुबह चला जाता था शाम को आता था, ज्यादा समय उन गायों के साथ ही रहता था, ऐसा दिखाया है। और भी एक बात भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जब वो वापस लौट कर आता था उसके चेहरे उसके पूरे शरीर में धूल होती थी। अब वो गाय कौन, तो दिखाते हैं कि जन्म जन्म से ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब आप धरती पर आओगे तो हमें ऐसा बना देना कि हम निरंतर आपके साथ रहें। तो दिखाया है, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, कि वो सारे साधु संन्यासी जो भक्त थे वो गाय बन गए। और दिखाया है कि कृष्ण जब आता था उसके चेहरे पर धूल मिट्टी पूरी, वो सब गायों के चरणों की धूल वो अपने शरीर को लगा देता, इतना उनसे प्यार था। तो बाबा माताओं को कह रहे हैं तुम सब कौन हो, गौपाल की गौवे। तो पांचवा समान है मैं एकरस आत्मा हूँ, समझदार आत्मा हूँ, और गौपाल की गैया। ये हो गया पांचवा। फिर उसके बाद में थर्ड पार्टी से मुलाकात है जिसमें तीन बातें हैं, हम उसको ले लेंगे छठवा समान या खुशी की पॉइंट या फिर नशे की पॉइंट। उसमें बाबा ने सबसे पहली बात जो बताई है वो है कि तुम सदा मस्ती में मस्त, ईश्वरीय मस्ती में मगन या मस्त आत्मा है। तुम सब कौन हो, ईश्वरीय मस्ती में मस्त आत्माएं हो। इसमें बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों तुम समझते हो, क्योंकि तुम पहले फर्श निवासी थे, अभी फर्श निवासी से अर्श निवासी बन गए, अर्श अर्थात आसमान। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारी बुद्धि देह में जाए, बुद्धि पाव है, इस बुद्धि रूपी पाव को तुम देह रूपी धरती में नहीं रख सकते, इसलिए तुमको ईश्वरीय मस्ती है, इसलिए तुमको ईश्वरीय नशा है, इस मस्ती में तुम मस्त आत्माएं, अर्थात बुद्धि देह की तरफ ना जाए। देह खींचता है, देह का आकर्षण होता है, संसार में चारों तरफ केवल देह का प्रदर्शन है, हर आत्मा देह में डूबी हुई है, देह में ही सुख का अनुभव करती है, देह के भोग देह की इच्छा है, ये देह ही सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बस ये देह का जो सुख है और देह का जो मिलन है यही सब कुछ, जबकि देह के सारे सुख नश्वर है। देह के सुख प्राप्त होते ही उसके साथ में फ्रस्ट्रेशन आता है, उसके साथ में डिप्रेशन आता है, फिर भी एडिक्शन है वो एक। तो बाबा कह रहे तुम अपनी बुद्धि को, बुद्धि का अगर पाव है वो धरती पे नहीं रख सकते, तुम्हारा पाव हमेशा ऊपर रहेगा, अर्श निवासी बन गए तुम, फर्श निवासी थे अर्श निवासी बन गए। तो यह है छठवां समान या खुशी की पॉइंट कि तुम वो आत्माएं हो जो सदा ईश्वरीय मस्ती में रहते हो, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। आप सबसे एक प्रश्न है कि व्यक्ति को नशा कब चढ़ता है, जब वो दारू पीता है तब नशा कब चढ़ता है, एक दारू पीने वाला व्यक्ति है नशा कब चढ़ता है उसको,
बहुत पीता है, बहुत पी लेता है तभी।
हाँ, पांच कारण चाहिए नशा चढ़ने के लिए। एक तो उसने बहुत पीना चाहिए, थोड़ा सा अगर पी ले नशा नहीं चढ़ेगा, डोज ज्यादा चाहिए फर्स्ट, सेकंड बार बार पीना पड़ेगा तब उसको नशा चढ़ता है, थर्ड नीट सॉल्यूशन चाहिए, नीट सॉल्यूशन मतलब उसमें कोई मिक्स नहीं चाहिए, पानी भी नहीं मिक्स कर देंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा, नीट बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन। फोर्थ उसके साथ में और दो तीन चीजें नहीं पीनी है, इधर दारू भी पी रहा है, इधर लिमका भी पी रहा है, इधर गन्ने का जूस भी पी रहा है, इधर आम का सीजन चल रहा है, आम का जूस भी पी रहा है, तो नशा चढ़ेगा क्या? और पांचवा ग्रुप चाहिए, उसके दोस्तों की महफिल चाहिए तो उसको नशा चढ़ता है। तो ये पांच चीजें इधर भी होनी चाहिए। सबसे पहला डोज़ बढ़ाओ। ये जो ज्ञान की मुरली है, एक बार मुरली सुबह पढ़ ली, सुन ली, काम पूरा हुआ तो नशा चढ़ेगा क्या? ना, डोज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, कई बार, डोज मोर और कई बार, और प्योर, प्योर अर्थात नीट सॉल्यूशन, अर्थात अव्यक्त मुरलियों का ध्यान अध्ययन, अव्यक्त मुरली प्योर वाइन, साकार मुरली थी, पर मोस्ट की अव्यक्त मुरलियों में जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, साइकोलॉजी की बातें हैं, वो बहुत डीप है। और उसके बाद उसके साथ में संसार का बहुत सारा न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो ये सारा नशा डाइल्यूट हो जाएगा। और लास्ट ग्रुप, ग्रुप में पीना है, सारा परिवार बैठकर ज्ञान की थोड़ी चर्चा करें, यदि घर में सभी ज्ञान में है तो, या तो कभी फोन कर, परंतु चाहिए। तो सिक्स पॉइंट है, हम सब वो आत्माएं हैं जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेटेड सोल्स हैं, नशे में मस्त। अगला पॉइंट है मायाजीत। सेवेंथ पॉइंट इज, हम सब वो आत्माएं हैं जो मायाजीत है, मायाजीत बने हो इसलिए बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी। जो मायाजीत नहीं वो विश्व का कल्याण भी नहीं कर सकते, जो खुद ही माया के अधीन है, जो खुद ही विकारों में डूब रहे हैं, जो खुद ही विकारों के द्वारा पराजित होते रहते, डिफीट होती रहती है, वो विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। तो जैसे बाप बेहद का है, तुम भी बेहद का हो, बेहद के सेवाधारी हो, बेहद अर्थात विश्व के सेवाधारी। तो यहाँ ये बात कही, तो सेवेंथ स्वमानी स्वमान है, मैं मायाजीत आत्मा हूं। और लास्ट स्वमान है स्वराज्य अधिकारी, एट लास्ट स्वमान है स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने एक गीत का यह वर्णन किया है जो तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, वो गीत है मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम। आज हमको किसी ने ये गीत भेजा, भक्ति मार्ग का गीत है, और साकार मुरलियों में भी बहुत आता है मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम, कबीर का कोई गीत है ये। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुम ये गीत गाते थे मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम, परंतु अब जब बाप के बने हो तो गुलाम नहीं रहे, तुम राजा बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए। और राजा बन गए इसलिए सारी कर्मेंद्रिया अपने आप रास्ते पर आ गई। क्या हो गया? सारी कर्मेंद्रिया अपने आप रास्ते पर आ गई, नहीं तो कर्मेंद्रिया कुछ ना कुछ हलचल करती थी। तो तुम सब कौन हो? स्वराज्य अधिकारी, अर्थात संयम, अर्थात सेल्फ कंट्रोल। जिसके पास जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वो उतना ज्यादा पावरफुल, जो जितना अधिक अधिक इंडलजेंट वो कम शक्तिशाली, जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने आप शक्तिशाली होगा। तो कंट्रोल अपने अंदर का बढ़ाना है। तो ऐसे ये कितने सम्मान दिए बाबा ने, ये खुशी के पॉइंट तो कौन कौन से थे फिर से बताएंगे। पहला बताया मैं
विशेष आत्मा,
मैं विशेष आत्मा हूँ
समर्थ आत्मा हूँ,
समर्थ श्रेष्ठ
वाली आत्मा हूँ,
उमंग उत्साह वाली आत्मा,
उमंग उत्साह वाली आत्मा।
तीसरा
अंगद हूँ,
अंगद। चौथा
हीरो पाठधारी आत्मा हूँ,
हीरो पाठधारी,
हीरो पाठधारी।
पांचवा
आत्मा हूँ,
एक रस आत्मा,
एक रस आत्मा,
समझदार
समझदार, गोपाल की गाय,
गोपाल की गाय,
गोपाल की गाय।
बाद में छठवा
ईश्वरीय मस्ती में मस्त आत्मा हूँ,
ईश्वरीय मस्ती में मस्त आत्मा हूँ। सातवा
मायाजीत, मायाजीत आत्मा,
मायाजीत आत्मा हूँ। और लास्ट बताया
स्वराज्य अधिकारी,
तो देखो ये कितनी टोटल तीन पेज की मुरली है। इस मुरली को इस ढंग से पढ़ना है, इस ढंग से चिंतन करना है कि वो हमारी बुद्धि में रहे। क्लासेस बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत पढ़ ली, परंतु उसको इस तरह से चिंतन करना है, इस तरह से पढ़ना है कि वो हमको याद भी रहे। लोग कहते हैं मुरली तो पढ़ते परंतु याद कुछ नहीं रहती। ज्ञान एक ऐसी चीज है, बाबा कहते पारे मिसल है, उड़ जाता है। जब ज्ञान हमको तभी याद नहीं कि जब कोई परिस्थितियां जीवन में नहीं, और अचानक जब परिस्थिति आ जाएगी तब हम कहाँ से अचल होंगे, कहाँ से सम्मान में स्थित होंगे। इसलिए अभी से अभ्यास करना है कि जब मुरली पढ़े, केवल मुरली सुनना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ना अर्थात सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। एक होता है क्लास स्टडी, एक होता है सेल्फ होम स्टडी। सेंटर पर गए, मुरली सुनी, बहुत अच्छी बात, परंतु वहां से जाने के बाद हमारे पास या तो मोबाइल से पढ़े या तो सॉफ्ट हार्ड कॉपी हो, उसमें से कुछ जो पावरफुल पॉइंट है वो उसमें से निकालनी है। अभी हमने आपको जो पॉइंट्स बताई, आप अगर ढूंढने जाओ इसमें तो शायद ढूंढनी पड़ेगी कि कहां कौन सी पॉइंट और कैसी है ऐसी, क्योंकि बाबा कभी पॉइंट इस तरह से नहीं बताता। अभी ये पॉइंट पूरी हुई, ये पॉइंट और वो पॉइंट। लास्ट संडे की मुरली आपने सुननी होगी जिसमें बाबा ने कहा है ज्ञान रत्नों के पॉइंट की बुद्धि में गिनती करो। ज्ञान रत्नों से खेलो, ज्ञान रत्नों से पलो, ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाओ, ज्ञान रत्नों का सौदा करो। ये सारी बातें बाबा ने लास्ट संडे कही थी। तो ये भी ज्ञान रत्न है, और एक एक रत्न जो है, एक एक पॉइंट जो है, वो हमें शक्तिशाली बनाने वाली है। परिस्थिति में और कुछ काम नहीं आएगा, यही पॉइंट काम आए। जैसे कोई व्यक्ति है करोड़पति है, ठीक है, उसको नींद नहीं आती है, रात में सब कुछ है, सारे आराम के साधन है, एसी है, अच्छा बेड है, एक सेपरेट बंगला है, उसका सेपरेट रूम है, सब कुछ सारी सुख सुविधा है, पर उसको नींद नहीं आती। अनिद्रा, इंसोम्निया है। एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, गरीब है, और सोच लो वो ब्राह्मण है, बाबा का बच्चा है, और एक दिन उसने मुरली में सुन लिया कि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, एक पॉइंट थी स्लोगन में आ गई जैसे, और उसने वो पॉइंट को इतना अंदर धारण कर लिया कि मैं संतुष्ट हूं, मुझे इस संसार की कोई भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं संतुष्ट मनी हूं। तो वो एक पॉइंट उसके जीवन में सारे दिन भर में और रात में सोते समय शांति से वो सो सकता है। उस ज्ञान की पॉइंट उसके जीवन में शक्ति बन गई या स्वरूप में आ गई। और उस दूसरी तरफ हमने देखा कि एक मिलियनेयर, बिलियनेयर इज नॉट एबल टू स्लीप। तो ज्ञान कितना शक्तिशाली है, ज्ञान की एक एक पॉइंट में कितना पावर है। इसलिए अभी जो बातें हमने आपको गिनाई कि तीन प्रकार की आत्माएं संसार में, उनके तीन प्रकार के प्रश्न, फिर तीन समान, और फिर ये आठ अलग अलग समान कहो, या खुशी की पॉइंट कहो, या नशे की पॉइंट कहो, या पार्टियों की मुलाकात में जो बातें आई है वो कहो, तो ये सारी की सारी बातें उस दिन हमने सुना। डॉक्टर अशोक मेहता आए थे, वो कह रहे थे हम इतनी मुरलियां सुनते, अगर एक ही मुरली अगर धारण कर ली जाए सारे जीवन के लिए तो संपूर्ण बनने के लिए काफी, एक ही मुरली बस, इतनी सारी मुरलियां पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, एक ही अगर हम धारण कर ले, एक ही जैसे समान बताया मैं विशेष आत्मा हूं, इसको धारण कर ले, एक ही जैसे मैं समर्थ आत्मा हूं, हीरो पाटधारी हूं, अंगद हूं, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं, ये एक एक पॉइंट भी यदि धारण कर लिया जाए तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। अभी हम चाहेंगे आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए। कोई भी ये मुरली से संबंधित या ज्ञान इन जनरल।
जी इसको है,
कोई भी प्रश्न, आवाज सुनाई आ रही है हमारी?
हाँ जी, हाँ जी सुनाई देते हैं।
हाँ जी, कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का, ज्ञान से संबंधित, लौकिक परिवार से संबंधित, या इस मुरली से संबंधित, या किसी भी।
ओम शांति ब्रदर।
हाँ ओम शांति।
ओम शांति ब्रदर, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, बहुत अच्छा चल रहा है सब, योग और ज्ञान बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एवरीडे का कार्य करते करते वो बाबा का नाम निकल जाता है, फिर बाद में जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो हम तो उसको हर समय चलते फिरते कार्य करके उसको याद रखना था बाबा को, तो फिर वो स्लिप हो जाता है, उसका मनन चिंतन नहीं हो रहा है सही ढंग से।
तो उसके लिए आप तो याद कब आती है
जब कार्य काफी टाइम निकल जाता है, फिर कहते हो अरे हम तो बाबा का नाम वो लेना वो स्लिप हो गया है बाबा का नाम, तो हमें तो उसको हर समय चिंतन करना है उसको, यानी उस स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं हम। थैंक यू।
इतने ऐसा है कि बाबा ने मुरलियों में कहा है कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक कार्य तो वो होता है कि जिसमें आपको बहुत बुद्धि लगानी पड़ती, दूसरे कार्य होते हैं जो रूटीन है जिसमें आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे आप भोजन बना रहे हो, जैसे आप कुछ रूटीन का काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। अब कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट का यूज होता है, यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट टू मच, उन कार्यों के लिए ऐसा है कि कार्य शुरू करने से पहले बाबा को याद करना, कार्य के बीच में विद फुल डिवोशन विद फुल डेडिकेशन डू दैट वर्क, और जैसे ही काम पूरा होता है फिर याद करना। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति में गिल्ट कॉन्शियसनेस रहता है कि सुबह अमृत वेला बहुत अच्छा किया, फिर मुरली हमने बहुत अच्छी सुनी, फिर हमने नाश्ता भी बाबा की याद में गए, फिर जैसे ही ड्यूटी में गए सब डिस्टर्बेंस हो गया, सब कुछ बहुत हलचल आ गई, और फिर पूरा ही भूल गए, और सीधा फिर रात को जब शाम को या रात को घर आए तब फिर बाबा को याद किया या फिर कहा कि पता नहीं क्या हो गया आज। तो ये ना होने के लिए एक तो आपको दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहला, जो रोज साकार मुरली चलती है या जो रोज सुबह की मुरली होती है, उस मुरली से आपको एक या दो या तीन ले लो, तीन टॉपिक निकाल लेने हैं बस, और वो टॉपिक आप अपने मोबाइल पे नोट करके रखो कि ये टॉपिक्स है कि जिस पर आज मुझे चिंतन करना है। जैसे आज का ये जो मुरली है इसमें है कि हम ये टॉपिक निकाल सकते हैं, ये जो मिलन है ये कैसा मिलन है, जैसे उसके कई सारे उत्तर दिए जा सकते हैं, अमूल्य मिलन है, वंडरफुल मिलन है, विचित्र मिलन है, कल्प में एक बार होने वाला मिलन है। तो आप अपने आप को सुबह अमृत वेले के बाद का जो टाइम है, मुरली से पहले और अमृत वेले के बाद ये जो पीरियड है, इसमें मुरली पढ़ के उसमें से कुछ टॉपिक निकाल लेना, और फिर अपने आप को काम देना कि सारे दिन भर इन टॉपिक पर मुझे थोड़ा थोड़ा चिंतन करना है ड्यूटी आवर्स में, क्योंकि ड्यूटी आवर्स में एक बार घुस गए कि वहां से फिर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पूरा लॉस्ट हो जाता है वो जो ज्ञान का याद। एक है बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक है बाबा को याद करना, एक है ज्ञान को याद करना, और उसी मुरली में बाबा ने कहा बाबा के ज्ञान को याद करना बाबा को याद करने से भी ज्यादा फायदेमंद। तो बाबा तो निराकारी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, समटाइम्स यू मे नॉट रिमेम्बर हिम, बट वॉट यू कैन डू इज यू ट्राई टू रिमेम्बर नॉलेज। अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करके रखना, और बीच बीच में जो सुबह मुरली चली थी उसके कुछ पॉइंट नोट देम डाउन इन द योर मोबाइल और इन स्मॉल डायरी, और निकाल के बीच बीच में देखते रहना, दो घंटे के बाद, तीन घंटे के बाद। ऐसा ना हो कि पूरा हम भूल जाए, उसको जगदीश भाई कहते थे कि ऐसा ना हो कि सुबह याद किया और सारे दिन भर भूल गए और फिर सीधा रात को याद किया। दिन भर में थोड़ी थोड़ी जो उसकी जोत है, ज्वाला है, वो जलती रहे याद की। तो बीच बीच में ध्यान की पॉइंट याद करो, बीच बीच में अगर टाइम मिल जाए तो लिखना चालू करो, मोबाइल में ही टाइप करो और मोबाइल में ही चिंतन करो टाइप करते करते, सम राइट सम पॉइंट्स ऑफ नॉलेज मोबाइल में ही। एक तो ये उसके बाद जैसे कहा काम करने से पहले याद करना, और बहुत बुद्धि वाला काम है तो सीधा काम के बाद। हाउ टू रिमेम्बर इज जस्ट थैंक कि बाबा ये काम हो गया, थैंक यू, ये भी एक याद है। तो इस मुरली में कहा ना, दुनिया वाले कहते हैं कि आप भगवान की तरफ मन कैसे लगाए, और तुम कहते हो कि मन
आवाज बंद हो गया ब्रदर।
सुनाई नहीं देता है,
आवाज नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रहा,
आवाज नहीं आ रहा ब्रदर,
आवाज नहीं आ रहा है।
हमें एक्शन से बताओ,
प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न?
ओम शांति।
ओम शांति, लास्ट वाला पार्ट
एक ओम शांति,
आवाज बंद हो गया था, लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया।
अच्छा कहाँ से?
आवाज नहीं आ रहे हैं।
अभी आ रहे हैं?
हाँ जी, हाँ जी अभी आ रहा है। जो आप बता रहे थे कि काम से पहले,
हाँ
हाँ जी काम से पहले और
याद करना, हाँ जब बुद्धि वाला काम हो तो बाबा को याद करना कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ। काम जब करते तो उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाना, अगर वो इंटेलेक्चुअल काम है, और वंस यू फिनिश देन अगेन यू ट्राई टू रिमेम्बर हिम, देन अगेन यू थैंक हिम फॉर वॉट एवर यू डिड, जो भी किया उसके लिए धन्यवाद देना। ये धन्यवाद देना, ये थैंकफुलनेस, ये ग्रेटिट्यूड जो है, ये भी एक याद का ही रूप है कि बाबा थैंक, ये जो काम मैंने किया इसके लिए आपने मुझे बहुत अच्छी मदद की, धन्यवाद। तो काम के बीच बीच में थैंक, काम के बीच बीच में थोड़ा सा राइटिंग, काम के बीच बीच में थोड़ा सा चिंतन, काम के बीच बीच में भी थोड़ी सी योग की ड्रिल, सिंपल सी ड्रिल, मैं आत्मा हूं किरणें फैल रही है, या फिर दूसरों को आत्मा देखना, ये ड्रिल करते रहना, ठीक है। और कोई प्रश्न?
ओम शांति।
नेक्स्ट क्वेश्चन।
थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा।
ओम शांति ब्रदर।
ओम शांति।
ओम शांति। कैन आई हेल्प ब्रदर? कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस ब्रदर?
ओम शांति। प्रश्न पूछा
था,
तो बाबा के साथ कौन सा संबंध बहुत ही वर्क कर सकता है, जो भी वर्तन स्टेज बट्टी में, वर्तन स्टेज बट्टी के लिए कौन सा संबंध बाबा के साथ जोड़ने से?
अच्छा, वोल्केनिक स्टेज बट्टी में, अच्छा
कौन सा संबंध में जोड़ना है बाबा?
हाँ देखो, हर एक आत्मा ने अपने अपने तरीके से बाबा के साथ संबंध जोड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही संबंध से आप बाबा को याद करो। जैसे अभी कुछ समय पहले एक माता थी, तो हमने उससे पूछा था आपने बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ा है, तो उसने कहा था कि मेरा जो पति था, लौकिक पति, मुझे बहुत तंग करता था। जब हम ज्ञान में आए हैं तो बहुत सताता था, तो मैंने भगवान को अपना भाई बना दिया। तो जब भी ऐसा कुछ होता था घर में, तो फिर मैं बाबा से कहती थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो उसने राखी के बंधन को निभाना अर्थात पवित्रता की प्रॉब्लम थी उसको, क्योंकि पति जो था वो अज्ञानी था और बहुत उसको तंग करता था। और उसने बाबा से जैसे भाई का संबंध जोड़ा, और उसने कहा कि जब भी बाबा को मैं बहुत दिल से ऐसे याद करती थी, अपने आप मेरी रक्षा हो जाती थी, और धीरे धीरे फिर उसका पति भी ज्ञान में आ गया। तो हर आत्मा का अपना अपना है। जैसे पर आपने प्रश्न पूछा है ज्वालामुखी योग में, तो ज्वालामुखी योग तो ऐसी एक चीज है कि जिसमें एक्चुअली सूक्ष्म वतन में हम सारे संबंध जोड़ते हैं, साकार वतन में सारे संबंध जोड़ते हैं। ज्वालामुखी योग अर्थात परम धाम की अवस्था, परम धाम की जो अवस्था है उसमें शब्द बहुत कम होते हैं। परम धाम की जो अवस्था है वो मौन की अवस्था है, वाणी से परे की अवस्था है। तो उस अवस्था में किसी संबंध से याद करना, उससे भी आत्मा परे निकल जाती है। पर हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए आप सूक्ष्म वतन में अगर कोई एक संबंध चाहते हैं तो आप उसको अपना फ्रेंड बना सकते हैं कि बाबा मेरा दोस्त है और उससे मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूं। वहां पर उसके साथ सारा कुछ शेयर करके हल्के होकर फिर ऊपर जाना है, ताकि परम धाम में फिर ज्वालामुखी योग हो सके। परंतु कई लोग कहते हैं कि हम परम धाम में बिंदी के साथ सारे संबंधों का अनुभव करते हैं, वो भी ठीक है, परंतु परम धाम में वास्तव में निर्वाण है, आवाज से परे की अवस्था है। वहां पर कोई ऐसा संबंध नहीं है, वहां पे केवल वो महाज्योति है और मैं, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, या फिर मैं उसके साथ कंबाइंड कंप्लीट स्टेज वेयर सोल कंबाइंड विद सुप्रीम सोल, स्टेज ऑफ वननेस, वो जो अवस्था है एक्चुअली दैट इज नोन एज ज्वालामुखी योग, वोल्केनिक योग। तो उसमें तो आप ये सम्मान, जैसे आज सुबह की जो मुरली है उसमें वरदान में आया है कि प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहो, और उसकी विधि है बाप और आप युगल हो। तो एक संबंध हमने कहता है फ्रेंड का, सूक्ष्म वतन में दूसरा संबंध ले सकते वो मेरा युगल है, और उसी परम धाम में जाकर वो और मैं एक, हम दोनों, he and I are one, ये अनुभव किया जा सकता है। तो परम धाम में कम्बाइंड स्टेज का अनुभव जिसमें वो और मैं एक है, ऐसा अनुभव करना है। और कोई प्रश्न?
ओम शांति।
और कोई प्रश्न हो जी?
एक प्रश्न।
ओम शांति ब्रदर।
हमको तो पता है कि जब से हमने नॉलेज लिया कि सोल कॉन्शियस में रहना है, बट बार बार हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं एंड देन बॉडी का जो भी पेन्स है, हेल्थ इश्यूज है, वो बार बार उसमें फंस जाते हैं। तो ये सब हमको निकाल के वापस सोल कॉन्शियस में रहना, लेस बॉडी कॉन्शियस होना, वो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन? तो आप कोई भी
ये जो प्रैक्टिस
बताएंगे कि हर दिन हम कैसे करेंगे?
ये जो प्रैक्टिस है, आपको इस प्रैक्टिस के लिए मेन जो चीज है, देखो दिन भर में ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। इसका जो मेन आधार है सोल कॉन्शियसनेस का, वो आधार है अमृत वेला। अमृत वेला आप कितना शरीर से डिटैच होते हैं, अमृत वेला कितना समय तक आपको सोल का अनुभव करते हैं, उसी का असर, उसी का इफेक्ट सारे दिन भर चलेगा। यदि आप अमृत वेला शक्तिशाली नहीं, तो सारा दिन भी शक्तिशाली नहीं। शक्तिशाली का अर्थ है आत्मा अभिमानी स्थिति शक्तिशाली है, देह अभिमानी स्थिति कमजोर स्थिति। सारे दिन भर देह खींचे, सारे दिन भर देह में पेन है, हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड दैट समटाइम्स विल मेक यू ओवर हेल्थ कॉन्शियस। दिन रात कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द बॉडी। द मोमेंट यू मीट समबडी यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग यूर डिसीजेस, यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग यूर मेडिकल हिस्ट्री, यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वेंट टू वन डॉक्टर, टू अनदर डॉक्टर, टू थर्ड डॉक्टर एंड ऑल दैट सो एंड सो फोर्थ। तो एक जो अभ्यास करना है सोल कॉन्शियसनेस के लिए, वो है दो चीजें बताएंगे। एक तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एक अमृत वेला शक्तिशाली बनाने के लिए जल्दी सोना, उसकी प्लानिंग करना। अमृत वेला शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसी हमारी रात की सोने की विधि क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। आप यदि मोबाइल पर लगे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से या व्यर्थ की बातें चल रही है, ये सब करते करते इफ यू आर गोइंग ऑफ टू स्लीप, देन डोंट एक्सपेक्ट यूर अमृत वेला टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड बेसिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस इज अमृत वेला। इसलिए रात को सोने की विधि को ठीक करना है। एक बाबा की किताब है, शायद आपके पास होगी, अमृत वेला, छोटी सी किताब है, जिसने नहीं पढ़ी होगी, टेक दैट बुक एंड नेक्स्ट वन मंथ कीप ओनली रीड दैट बुक, सुबह शाम दोपहर तीन बार, जब जब टाइम मिले एक एक पैराग्राफ उसमें से पढ़ना है और समझना है व्हाट आई हैव टू डू, हाउ कैन आई मेक माय अमृत वेला स्ट्रांग। तो रात को सोने की विधि एंड मेकिंग अमृत वेला स्ट्रांग। जब ये अमृत वेला स्ट्रांग होगा और उसमें हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, उसमें हम अलग अलग नई नई ड्रिल्स करेंगे हर दिन, तो वो ड्रिल्स जो अलग अलग करेंगे, उस ड्रिल में हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी और कुछ अनुभव होंगे, और फिर देन वी कैन प्रैक्टिस द सेम सोल कॉन्शियस स्टेज ड्यूरिंग अवर वर्किंग आवर्स, द सेम सोल कॉन्शियसनेस स्टेज व्हेन वी आर इन ट्रैफिक, जब ट्रैफिक में है, जब ऑफिस में है, जब भीड़ में है, जब लोगों के बीच में है, क्योंकि हमारे पास वो स्टॉक जमा है पावरफुल सुबह का, सो दैट स्टॉक विल हेल्प यू थ्रू आउट द डे। नहीं तो अगर वो स्टॉक जमा नहीं है, खाली हम दिन भर में आत्माभिमानी स्थिति की अभ्यास करेंगे तो नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट थिंग इज शाम का योग। अगेन जो शाम का समय होता है, जैसे अमृत वेला शक्तिशाली बनाया, मेक इट अ पॉइंट दैट यू मेक यूर इवनिंग टाइम ऑल्सो पावरफुल, एंड देन सेकेंड थिंग इज यूर चर्निंग ऑफ नॉलेज, यूर चिंतन, ज्ञान का जो चिंतन है, मुरली का जो चिंतन है, मुरली का जो अध्ययन है, उसको भी हमको शक्तिशाली बनाना है। जब वो शक्तिशाली बनेगा तो अपने आप आत्माभिमानी स्थिति धीरे 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 शक्तिशाली बनने लगेगी। तो ये दो चीजें करनी है, योग का अभ्यास अमृत वेला बढ़ाना है और दूसरा जर्निंग ऑफ नॉलेज। जर्निंग ऑफ नॉलेज के लिए यू कैन फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप, ग्रुप के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है बस। जो दो लोग रोज रात में सोने से पहले या दिन भर कभी भी या रोज नहीं मिल सकते तो हफ्ते में एक दो बार बैठे और ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा करें, ये जैसे आपने हमें अभी प्रश्न पूछा, एक दूसरे से ये प्रश्न पूछे कि ये प्रॉब्लम आ रही है क्या करें। सो दिस इज विल हेल्प यू बिकम मोर एंड मोर सोल कॉन्शियस। वन मोर थिंग इज इंक्रीज द लव फॉर गॉड, रीड अबाउट हिम, थिंक अबाउट हिम, इंक्रीज लिसन क्लासेस दादियों के, वरिष्ठ भाइयों के, दैट विल हेल्प यू ब्रॉडन यूर प्रोस्पेक्टिव, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस यज्ञ। और सर दादियों के वीडियो से उनके जीवन की कहानी है, इफ यू लिसन टू देम यू विल ऑटोमेटिकली योर लव फॉर गॉड विल इंक्रीज, एंड वेन योर लव फॉर गॉड इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली यू ट्राई टू बिकम वॉट ही वॉन्ट्स अस टू बिकम, दैट इज फुल कॉन्शियस। सो आई थिंक जस्ट ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स एंड इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट,
ओम शांति ब्रदर।
ओम शांति।
बाबा अपनी मुरली में साइलेंस पावर की बात करते हैं, तो साइलेंस पावर को बढ़ाना तो
जी।
और कभी कभी बाबा साइलेंस पावर में थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं कि डीप साइलेंस में जाओ और डेड साइलेंस में जाओ, तो साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस का थोड़ा आप डिफरेंस बताइए प्लीज। थैंक यू। ओम शांति
जी। देखो बाबा, साइलेंस पावर जब वर्ड कहते हैं उसका अलग अलग अर्थों से कहते हैं। पहला तो बाबा का साइलेंस पावर, और साइलेंस मतलब शांति की शक्ति। बाबा का साइलेंस पावर जब भी कहते हैं बाबा, वो होता है हिंदी में शांति की शक्ति। बाबा साइलेंस पावर चुप रहने के लिए नहीं कहते या मौन के लिए नहीं कहते, पहली बात। परंतु कहीं कहीं कहा भी है, अलग अलग मूल्यों में अलग अलग शब्द है। तो साइलेंस पावर में दो बातें आती है, एक तो मुख का मौन और एक दूसरा मन का मौन, दोनों भी आवश्यक है। इवन द स्थूल, इवन द ग्रॉस साइलेंस इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज वी वेस्ट, हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा बोलने में सारे दिन भर वेस्ट होती है कि इवन स्थूल मौन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्थूल मौन और फिर धीरे धीरे मन का मौन। आपने प्रश्न पूछा है, एक होता है डेड साइलेंस, एक होता है स्वीट साइलेंस। अभी कल परसों ही मुरली थी कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा हो जाता है ना, जब कोई शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा होता है। उसी तरह जैसे आत्मा शरीर में होती है, हो जाती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये जो आत्मा शरीर होना है, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज डेड साइलेंस। वेन यू गेट डिटैच फ्रॉम द बॉडी, जब आप शरीर से डिटैच हो जाते हो और इतना शक्तिशाली ढंग से डिटैच हो जाते हो, जैसे कोई डेथ होती है तो कैसे सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही ये जैसे डाइंग अलाइव, मरजीवा, जीते जी मर जाना कुछ समय के लिए। आपने मधुबन में देखा होगा अमृत वेला कैसा समय होता है। अमृत वेला बहुत सुबह सुबह जैसे 2 या 3 बजे का टाइम जो होता है, हम देखते हैं एकदम डेड साइलेंस होता है, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाना, ये जो अनुभव है दिस इज नोन एज डेड साइलेंस। दूसरा एक है जिसको हम कहते हैं स्वीट साइलेंस। तो जैसे परमधाम का जो साइलेंस है, दैट इज नोन एज स्वीट साइलेंस, कि वहां पे साइलेंस तो है बट इट इज वेरी वेरी स्वीट। जैसे कि किरणों के नीचे है हम आत्मा, ऊपर से महाज्योति शिव बाबा और उसकी बहुत सारी किरणें मुझ पर गिर रही है, आ रही है। तो यू एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ स्वीटनेस, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रेड है और वो स्वीट साइलेंस है और ये पूरा कंप्लीट साइलेंस है। साइलेंस इज साइलेंस, इट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ साउंड, बट इट इज द साउंड विदाउट साउंड, इट इज द साउंडलेस साउंड कहा जाता है, एक हाथ की ताली कहा जाता है। सो चाहे वो डेड साइलेंस हो या स्वीट साइलेंस हो, द वे इज स्टार्ट विद ग्रॉस साइलेंस। At least till 8 o'clock in the morning we should remain mourn. And again, जब शाम को आते हैं और जैसे ही जहां जरूरत नहीं है वहां फिर से मौन, और सारे दिन भर तो सेवाएं होती है, हो सके तो उन सेवाओं के बीच बीच में मौन। जब लंबा समय मौन का अभ्यास होगा और फिर अमृत वेला हम बैठेंगे और शाम को बैठेंगे या रात को बैठेंगे, तो हम शरीर से अपने आप को डिटैच कर सकेंगे, डेथ साइलेंस का अनुभव, परम नाम में वो स्वीट या स्वीटेस्ट साइलेंस का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।
थैंक यू ब्रदर। ओम शांति।
ओम शांति। और कोई प्रश्न
जो तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है, तीव्र पुरुषार्थ, तो उसके लिए आपके अनुभव हमें सुनाइए। तो
उसने
आप इतने जल्दी कैसे इतना परफेक्ट जो बाबा कहते हैं ना परफेक्ट ज्ञान उठाना, तो वो अनुभव आपसे हम सुनना चाहते
जी। इसमें जैसे हमने कहा ना दो तीन बातें हैं, एक तो आप सबसे पहले अपने अमृत वाले को शक्तिशाली बना दो, दूसरा ज्ञान का जो चिंतन है ज्ञान का जो मनन है उसको बढ़ाना है। जितना चर्निंग जितना चिंतन और मनन अभी हम कर रहे हैं बहुत कम है। जैसे हमने कहा ना ये मुरली आज की जो मुरली हमने बताई अभी इसमें अभी जो बातें हमने बताई सिर्फ जस्ट इन आई से 5% बताई थी, इसमें इतनी डेप्थ है इतनी गहराई है। जब इस एक एक लाइन और एक एक पॉइंट में हम डूबेंगे और इसको समझेंगे तब कहीं जाकर हमको इसकी जो गहराई है वो समझ में आएगी। उसके लिए एक प्रिंसिपल है ये समझना कि मैंने कुछ भी समझा नहीं है। हम देखते हैं कभी कभी ये ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है कि मैंने ज्ञान को बहुत समझ लिया है हमको सब बातें पता है। ये निरंतर समझना जैसे सोक्रेटिस का दिखाया है ना सुकरात का, जब वो उधर यूनान में था और वो ओरेकल ऑफ डेल्फी वहां से वो पूछता था, वो एक दिन अनाउंसमेंट करता है कि सबसे वाइसेस्ट पर्सन कौन है, तो वो डेल्फी कहता है वो वहां पर घोषणा होती है कि सुकरात सोक्रेटिस जो है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो उसके पास जाकर उसको पूछा जाता है क्या तुम सबसे बुद्धिमान हो, वो कहता है नहीं मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नॉट, मुझे कुछ भी नहीं पता। अंदर से ये लगन हो कि हमने अब तक जो ज्ञान को जाना है समझा है वो कुछ भी नहीं है, जीरो। नाउ आई बिगिन नाउ आई स्टार्ट एवरी डे इज अ न्यू मुरली एवरी डे इज न्यू चिंतन। ऐसा नहीं कि एक ही चिंतन किया और वो ही चिंतन हम करते रहे, हर दिन नया चिंतन हो, हर दिन नया उमंग हो नया उत्साह हो, हर दिन नई चर्निंग हो। तो सेकेंड थिंग इज चर्निंग, थर्ड थिंग इज साइलेंस। हमने कहा है कि स्व अनुभव बताओ, तो हल से कि जितना वाचा में है उससे डबल हम मौन में रहे, जितना वाचा में है उतना डबल टाइम वी शुड स्टे इन साइलेंस। थर्ड थिंग इज सॉलिट्यूड एकांत, चाहे छत पर जाओ या कहीं घूमने का स्थान है गार्डन, वहां पर जाकर मुरली का चिंतन मनन अध्ययन करना। यदि कमरा है वहां पर किया जा सकता है, वहां पर भी बहुत अच्छा, पर जितना बाहर निकलेंगे एंड यू गो इन द विसिनिटी ऑफ नेचर प्रकृति के सानिध्य में, वहां पर हमारी चिंतन की धारा बढ़ जाती है। तो मौन एकांत योग और समझ, जैसे हमने कहा ना कि ये समझना कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है एंड 1000 miles टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। बस हम व्यक्तिगत आपने हमसे पूछा हम यही कहेंगे कि हम तो हमेशा ये कुछ पूछते रहते हैं, ये समझते रहते हैं कि हम तो बहुत लेट आए हैं और इसलिए हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारी दादियों ने जितना पुरुषार्थ किया है उतना पुरुषार्थ तो हम कब करेंगे, इसलिए हमें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना है। इसलिए उन्होंने अगर इतना किया है तो हमें उसे डबल करना है। हम निरंतर अंदर मन में यही सोचते रहते हैं, बस हम लगता है कि ये तो अनुभव होते हैं हमसे। और कोई प्रश्न?
हाँ ओम शांति ब्रदर।
ओम शांति।
हाँ एक प्रश्न है कि जिस दिन हमको जैसे ऑफिस का वर्क का असर अमृत वेले पे कैसे होता है, कि जिस दिन हमको बहुत काम है बहुत डिसीजन मेकिंग है बहुत थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, बीच बीच में यानी याद बाबा को करते भी है, बट जब भी ऐसा दिन प्रीवियस दिन होता है तो नेक्स्ट डे उसका असर कभी कभी अमृत वेले पे दिखाई देता है कि अचानक थॉट आ जाता है ऑफिस का, पहले ही प्रीवियस नाइट अच्छा
से हम
अभी सुनाई देता है
हेलो
अभी सुनाई देता है
हाँ अभी आ रहा है अभी आ रहा
है तो प्रश्न है कि
हेलो
जो ऑफिस ऑफिस वर्क के रिलेटेड
हाँ,
है
हाँ,
कि जब भी किसी दिन बहुत थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो जो कंटिन्यूस लर्निंग रहता है ऑफिस का उसका असर कभी कभी नेक्स्ट डे अमृत वेले पे यानी न चाहते हुए भी दिखाई देता है
हाँ,
तो
जी तो उसमें आपको एक काम करना है व्हेन यू फिनिश पूरे दिन का काम ठीक है शाम को शाम का टाइम मिलता है आपको योग के लिए उस दिन
हाँ हाँ जरूर शाम का
हेलो
शाम को योग करते
हैं हाँ हाँ तो शाम का जो टाइम है ना उसमें आपको क्या करना है जब आप बाबा के सामने बैठते हो उसमें जस्ट नैरेट एवरीथिंग टू हिम जैसे आपने 9 o'clock 8 o'clock अपना काम चालू किया एंटिल 5 o'clock यू आर एक्सट्रीमली बिजी ठीक है हेलो सुन रहे हैं जी यदि मॉर्निंग में आपने 8 बजे काम चालू किया और 5 o'clock पर आप बहुत ज्यादा बिजी है हेलो
सुन रहे ब्रदर
हाँ जी हाँ तो 5 o'clock तक आप एक्सट्रीमली बिजी है तो आप जो नुमा शाम का योग करने बैठेंगे या जहां पर भी है एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर यू सिट उस दिन क्या करना है योग न करते हुए मतलब वो उस तरह का जिस तरह रोज योग करते वो योग न करते हुए टर्न दिस योगा इनटू कॉन्वर्सेशन विद गॉड इसमें आप ये सोचो कि आप बाबा को सब कुछ सुना रहे हो कि क्या क्या हुआ एक एक इवेंट मॉर्निंग में ये हुआ फिर उससे मिले फिर उससे मिले ये जो समाचार देना है ना ये विल मेक यू लाइट नहीं तो ये सारों का असर दूसरे दिन अमृत वेले पर जाएगा इसके लिए वी नीड समथिंग सम कुशन सम बफर इन बिटवीन कि जिसमें आप सारे दिन भर में बहुत ज्यादा बिजी थे बहुत सारा चलो मानो कि उसमें डिस्टर्बेंस हो गया हो भी सकता है थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया या बहुत कुछ हो गया किसी के साथ तो वो सारा यू हैव टू न्यूट्रलाइज दैट अदरवाइज द इफेक्ट गो स्टिल नेक्स्ट अमृत वेले वॉट यू हैव टू डू इज सिट एंड टॉक विद बाबा एंड टेल हिम एवरीथिंग व्हाटएवर दैट हैपेंड जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसको बता दो और फिर अगर उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो मेक सम रफ प्लानिंग की उसको कैसे हम ठीक करें दूसरे दिन और फिर अमृत वेला फिर से बाबा से प्रेरणा लो कि वो जो दिनचर्या थी बहुत ज्यादा हेवी थी और उसमें हमको बहुत सारा काम बिल्कुल याद करने का भी टाइम नहीं मिला बट इवनिंग यू लिंक रीलिंक यूर सेल्फ विद बाबा ताकि नेक्स्ट अमृत वेला एकदम उसका भयंकर असर ना हो थोड़ा सा लाइट हो जाए शाम को ही या फिर रात को सोने से पहले हाफ एन आवर ऑफिशियली जैसे कि हम यू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड जस्ट नैरेट इन एवरीथिंग व्हाट एवर दैट हैपेंड जो कुछ हुआ सब कुछ उसको सुना दो आई थिंक जस्ट टेक दिस स्मॉल स्टेप एंड देन सी द रिजल्ट
ओके थैंक यू
हाँ जी आई थिंक लास्ट क्वेश्चन एनी लास्ट क्वेश्चन
किसको पूछना है लक्ष्मी अच्छा ओम शांति ब्रदर सिस्टर लक्ष्मी इज अवर मिशिगन सेंटर कोऑर्डिनेटर सिस्टर लक्ष्मी
जी जी जी
ओम शांति ब्रदर
ओम शांति लक्ष्मी बहन जी
आई एम सो ग्लैड यू सेड समथिंग इन इंग्लिश आई अप्रिशिएट दैट थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो द थ्री ब्रदर्स हैव ऑर्केस्ट्रेटेड दिस आई डोंट नो इफ यू कैन सी अस हियर
या
वन इज यू ऑफ कोर्स The other one is Srinivas Pai. I don't know if he's around there. But
yeah, he's here with me.
I'll probably will call him up.
Yeah.
And the other one is Gautam Bhai. Because of
Gautam
all
Bhai,
three of
right.
you, everything went very well. Thank you so much.
And, thanks to Baba and thanks to you all.
Brothers, this is a gift. It's a spiritual energy gift. I truly appreciate your coming. I know you're very busy, but thank you so much.
Thanks to you. Okay. Thanks to you all. Okay. See you again. Okay. Om Shanti to all of you.
Thank you, brother. Thank you, brother.
Thank you, brother. Thank you, Baba.
Thank you
for your precious time. Thank you, Baba.
Thank you.
Om Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti. Sachin Bhai. Thank you.
Om Shanti.
Om Shanti.
हमारा क्या है लक्ष्मी देन जब भी कोटू मीटिंग में किसी को बुलाते हैं ना तो वो हमेशा फिजिकली यहाँ आ जाते हैं या जो
भी जी.
तो फिजिकली वो यहाँ सेंटर पे आ ही जाते हैं तो वी विल वेट फॉर यू
जी जी जी
ओके थैंक यू
ओम शांति.